किस्सा कहानी बाय निधि बासु पॉडकास्ट में आप सबका स्वागत है। ये स्पॉटिफाई एक्सक्लूसिव पॉडकास्ट आपके लिए लेकर आई हूँ मैं निधि बासु। इस पॉडकास्ट में सुनिए अपनी पसंदीदा नए पुराने लेखकों द्वारा लिखी दिल छूने वाली हिंदी कहानियाँ केवल स्पॉटिफाई पर। फॉलो बटन दबा के मेरा पॉडकास्ट फॉलो जरूर करें। उत्कृष्ट भारतीय साहित्यकारों की चर्चा में शरद चंद्र चट्टोपाध्याय जी का जिक्र ना हो ये संभव नहीं। शरद बाबू की कहानियों और उपन्यासों ने भारतीय साहित्य को ही समृद्ध नहीं किया बल्कि भारतीय फिल्म जगत पर भी अमिट छाप छोड़ी है। आज सुनिए इन्हीं शरद चंद्र चट्टोपाध्याय जी की लिखी कहानी लालू भाग दो का हिंदी अनुवाद बलि का बकरा। वाचन है निधि बासु का। लोग उसे लालू के नाम से पुकारते थे लेकिन उसका घर का नाम कुछ और भी था। आपको ये तो पता ही होगा कि लाल शब्द का अर्थ प्रिय होता है। ये नाम उसका किसने रखा था ये मैं नहीं जानता, लेकिन देखा ऐसा गया है कि कोई कोई व्यक्ति यूं ही सबके प्रिय बन जाते हैं। लालू भी ऐसा ही व्यक्ति था। स्कूल से पास होकर हम कॉलेज में दाखिल हो गए। लालू ने कहा, भाई मैं अब रोजगार करूंगा। इसके बाद अपनी माँ से 10 रुपए मांगकर उसने ठेकेदारी का काम करना शुरू कर दिया। हम लोगों ने हंसकर उसका मजाक उड़ाते हुए कहा, अरे 10 रुपए में भला कहीं रोजगार होता है? अगर इतनी पूंजी से रोजगार होता तो सब कर लेते। लालू ने कहा, मेरे लिए इतना ही काफी है। वो सबके लिए प्रिय था इसलिए उसे काम मिलते देर ना लगी। कॉलेज से लौटते वक्त रोजाना हम उसे रास्ते में सिर पर छाता लगाए हुए कुछ मजदूरों के बीच अपने काम में व्यस्त पाते थे। हम लोगों को देखते ही चिढ़ाते हुए वो कह उठता, अरे जल्दी जल्दी कदम बढ़ाकर जाओ वरना परसेंटेज में कमी आ जाएगी। गांव की पाठशाला में जब हम एक साथ पढ़ते थे तभी से वो मिस्त्री का काम करने में चतुर था। उसके बस्ते में एक नहनी, एक छुरी, एक छोटी हथौड़ी, एक घोड़े की नाल और एक छेनी हर वक्त रखी रहती थी। इन चीजों का संग्रह उसने कब और कैसे किया ये मैं नहीं जानता, लेकिन ऐसा कोई कार्य नहीं बचा था जिसे वो इन सामग्रियों से ना कर सके। स्कूल के सभी साथियों का छाता मरम्मत, स्लेट का फ्रेम ठीक करना, खेलकूद के समय पजामा या कमीज को सी देना, इसी तरह के वो बहुत से काम किया करता था। किसी भी काम के लिए इनकार उसने कभी नहीं किया। इसके अलावा भी अनेकों प्रकार की चीजें बनाया करता था। एक बार छठ के मेले के समय 2 आने का रंगीन कागज और मिट्टी के प्याले खरीदकर न जाने क्या क्या बनाकर उसने गंगा के किनारे बैठकर उन खिलौनों को 2.5 रुपए में बेचा था। उस मुनाफे की रकम में से उसने हम लोगों को चिनिया बादाम भी खिलाया था। इसी तरह दिन गुजरते गए और हम क्रमशः बड़े होते गए। जिम्नास्टिक खेल लालू सबसे अधिक तेज खेलता था। उसके बदन में जैसी ताकत थी वैसा ही साहस था। डरने का नाम उसने कभी सुना ही नहीं था। कोई भी आकर बुलाए उसके यहाँ चला जाता था। प्रत्येक की विपदा के समय सबसे पहले वो जाकर हाजिर होता था। अगर उसमें कोई ऐप था तो एक यही था कि मौका पाने पर डराया करता था। चाहे कोई भी क्यों ना हो, बच्चा बूढ़ा, उसके लिए सब बराबर थे। हम तो समझ ही नहीं पाते थे लेकिन वो न जाने कैसे ऐसे विचित्र उपायों को खोज डालता था। आज उसकी एक कहानी सुना ही दूं। पड़ोस के मनोहर चटर्जी के यहाँ काली माँ की पूजा हो रही थी। ठीक आधी रात के समय बकरा बलिदान होना था लेकिन बलि देने वाले लोहार का कहीं भी पता नहीं था। देर होते देख कई व्यक्ति उसके यहाँ गए तो देखा लोहार के पेट में काफी दर्द है और आने में बिल्कुल असमर्थ। लौट कर आकर लोगों ने खबर दी। खबर पाते ही सब सिर पर हाथ रखकर बैठ गए। इधर बिना बलिदान किए पूजा अधूरी रह जाएगी। अब इतनी रात को दूसरे आदमी की तलाश कहाँ की जाए। इस साल अब देवी पूजा ठीक ढंग से नहीं हो पाएगी। तभी किसी ने कहा, अरे भाई लालू ये काम कर सकता है, इस तरह न जाने कितने बकरों को काट चुका है। इतना कहना था कि कुछ लोग लालू के घर उसे बुलाने के लिए दौड़ पड़े। लालू उस समय सो रहा था, उठकर बोला, नहीं नहीं, अरे बेटा मना मत करो, चले चलो, वरना देवी की पूजा संपन्न ना होने से गांव का सत्यानाश हो जाएगा। होने दो, बलिदान कार्य बचपन में मैंने किया था, लेकिन अब मैं नहीं करूंगा। जो लोग बुलाने आए काफी मान मनोवल करने लगे, क्योंकि बलिदान के मुहूर्त में अब केवल 15 मिनट बचे थे। इसके बाद बलिदान देना न देना बराबर होगा, महाकाली के प्रकोप से सर्वनाश हो जाएगा। तभी लालू के पिता ने आकर कहा, ये चारों तरफ से निराश होकर आए हैं, गांव के कल्याण के लिए तुम्हें जाना चाहिए, जाओ। इस आदेश को अस्वीकार कर दे, इतनी हिम्मत लालू में नहीं थी। फिर उसे चटर्जी साहब के यहाँ जाना पड़ा। लालू को अपने यहाँ देखकर चटर्जी महाशय प्रसन्न हो उठे। इधर बलिदान का समय नजदीक आता जा रहा था। जल्दी से बकरा लाकर उसे माला सिंदूर पहनाया गया, फिर कटघरे में उसका सिर रख दिया गया। पूजा देखने के लिए आई हुई भीड़ जय काली माता की जय का नारा लगाने लगी। उसी के बीच में देखते देखते खच से आवाज हुई और एक निरीह बेजान जीव का धड़ सिर से अलग होकर नीचे गिर पड़ा। खून की धार से धरती लाल हो उठी। लालू ने कुछ देर के लिए अपनी आंखें बंद कर ली। पुनः कुछ देर के लिए शंख ध्वनि घंटे की आवाज रुक गई। दूसरा बकरा आया, उसे भी पहले की तरह माला फूल और सिंदूर लगाया गया। इसके बाद भक्तों द्वारा जय काली माता की आवाज गूंजी और लालू का दाव एक बार पुनः ऊपर उठा और फिर एक बार आखिरी बार तड़फड़ाते हुए बकरा समस्त भक्तों के विरुद्ध न जाने कौन सी फरियाद करता हुआ शांत हो गया। उसके खून से लाल मिट्टी फिर भीग उठी। बाहर शहनाई बज रही थी, आंगन में बहुत से व्यक्ति जमा थे। सामने गलीचों के ऊपर मनोहर चटर्जी आंखें बंद करके इष्ट नाम जप रहे थे। तभी लालू एकाएक भयंकर रूप से गरज उठा। कोलाहल, शहनाई की आवाज, सब कुछ एक बार की रुक गए। सभी की कौतूहल भरी निगाहें लालू की तरफ घूम गईं। लालू ने बड़ी बड़ी आंखें नचाते हुए कहा, और बकरा कहाँ है? घर के भीतर से किसी ने डरते हुए पूछा, और बकरा? दो ही का तो बलिदान होने वाला था। लालू ने खून से लथपथ दाव को ऊपर की ओर 3-4 बार घुमाते हुए भीषण गर्जन करते हुए कहा, और बकरा नहीं है? ये नहीं हो सकता, मेरे सर पर खून चढ़ गया है, लाओ बकरा, वरना मैं आज जिसे देखूंगा उसी का बलिदान करूंगा। नरबलि, जय भवानी की, जय माता काली, कहता हुआ इधर से उधर उछलने लगा। इधर उसके हाथ का दाव लाठी की तरह भना भन घूम रहा था। उस समय लालू का रंग ढंग देखकर वहां की जो हालत हुई उसका वर्णन करना मुश्किल है। सभी एक साथ बाहर को दौड़ पड़े। कहीं लालू उन्हें पकड़कर बलि पर ना चढ़ा दे। इस भगदड़ के कारण वहां की हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई। कोई इधर गिरा तो कोई उधर, कोई मुंह के बल गिरा तो कोई सिर के बल, कोई किसी के हाथ के नीचे से भाग रहा है तो कोई किसी की टांग के नीचे से। ये सब कांड कुछ देर तक होता रहा, फिर सब शांत हो गया। लालू गरज उठा, मनोहर चटर्जी कहाँ हैं? पुरोहित कहाँ गया?
पुरोहित महाशय दुबले पतले थे और इसी भगदड़ के समय काली देवी की प्रतिमा के पीछे जाकर छिप गए। गुरुदेव महाशय कुशासन पर बैठे माला जप रहे थे। हालात देखकर वे भी एक बड़े खंबे की आड़ में जा छिपे। लेकिन मनोहर चटर्जी अपनी भारी भरकम तोंद लेकर भागने से लाचार रहे। लालू ने आगे बढ़कर उनका एक हाथ कसकर पकड़कर कहा,
चलो अब तुम्हारी बलि देता हूँ।
एक तो कसकर उसने हाथ पकड़ रखा था, उसके दूसरे हाथ में दाव देखकर चटर्जी के प्राण सूख गए।
लालू बेटा, जरा शांत होकर देख, मैं बकरा नहीं हूँ, आदमी हूँ। रिश्ते के नाते में मैं तेरा ताऊ लगता हूँ। तेरे पिताजी मेरे छोटे भाई की तरह हैं।
ये सब मैं नहीं जानता। इस वक्त मुझे खून चाहिए। चलो मैं तुम्हारा बलिदान करूंगा। जगदम्बा की यही इच्छा है।
नहीं नहीं नहीं, नहीं बेटा नहीं, माँ की ये इच्छा नहीं है, वो तो जग जननी है।
वे जगत जननी है, इसका पता है तुम्हें? अब फिर बकरा बलिदान करोगे? मुझे बलिदान देने के लिए अब बुलाओगे?
नहीं 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 बेटा नहीं, अब बलिदान कभी नहीं कराऊंगा। मैं काली माता के सामने कसम खाता हूँ, आज से मेरे यहाँ कभी बलिदान नहीं होगा।
ठीक कह रहे हो ना?
हाँ बेटा, ठीक कह रहा हूँ, अब कभी नहीं कराऊंगा। मेरा जोड़ दो बेटा, पकाने जाऊंगा।
लालू ने हाथ छोड़ते हुए कहा,
अच्छा जाओ, तुम्हें छोड़ दे रहा हूँ। लेकिन पुरोहित कहाँ गया और गुरुदेव वो कहाँ गया?
कहता हुआ वो एक बार फिर गरज उठा, फिर कमरे में से इधर उधर टहलते हुए बरामदे के करीब आ गया। उसका भयंकर रूप देखकर खंबे की आड़ से गुरुदेव और प्रतिमा की आड़ से पुरोहित जी दोनों एक साथ करुण स्वर में दो प्रकार की आवाजों में चीख उठे। दोनों का स्वर दो ढंग का ऐसा बेसुरा हो गया था कि लालू अपने आप को संभाल नहीं पाया। हो 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 कर हंसते हुए दाव एक ओर फेंक कर भाग खड़ा हुआ। तब किसी को समझते देर न लगी कि लालू ने ये सब ढोंग किया था। सचमुच उसके ऊपर काली माता सवार नहीं हुई थी, ये कांड लोगों को डराने के लिए ही उसने किया। थोड़ी देर बाद पुनः भक्तों की भीड़ जुट गई। अभी पूजा पूरी नहीं हुई थी। थोड़ी देर में महाकलरव के साथ पूजा समारोह शुरू हो गया। मनोहर चटर्जी ने नाराज होकर कहा,
कल ही कमबख्त ललुआ को 50 जूते उसके बाप से लगवाऊंगा।
लेकिन उसे जूते नहीं खाने पड़े। सवेरा होने से पहले ही वो गांव से गायब हो गया। एक हफ्ते के बाद एक दिन शाम के समय मनोहर चटर्जी के यहाँ जाकर उनसे माफी मांग आया। बाप की नाराजगी भी दूर हो गई। लेकिन इससे एक अच्छा काम ये हुआ कि उस घटना के बाद मनोहर चटर्जी के यहाँ फिर कभी बलिदान नहीं हुआ। आप सुन रहे थे शरद चंद्र चट्टोपाध्याय जी की लिखी कहानी लालू भाग दो का हिंदी अनुवाद बलि का बकरा। वाचन था निधि बासु का। आज की कहानी कैसी लगी? अगर पसंद आई तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। आपके कमेंट्स या फीडबैक का हमें इंतजार रहेगा। तो सुनते रहिए किस्सा कहानी बाय निधि बासु केवल स्पॉटिफाई पर, और फॉलो बटन दबा के मेरा पॉडकास्ट फॉलो करना ना भूलें।